पतंजलि देकर के कृष्ण सुख के सुख के लिए या उनके जो अपने नियजन हैं भक्त लोग हैं जिसके अंगत्य में हम भजन करते हैं उनके सुख के लिए ऐसा करते करते साधन अवस्था से हम लोग सिद्ध अवस्था में जब पहुंचे हैं तो ऐसे गुण उनके हमारे हृदय में आए। से गोपी भवामृत जा तो भर वेद धर्म तजि से कृष्ण के भजन ऐसे गोपी भावामृत गोपी भाव रूपी अमृत में भाव क्या है गोपियां जो कृष्ण को सुख देने के लिए जो भावना करती हैं वो भावना का अमृत उसको पाने के लिए हम भी कृष्ण की उसी प्रकार से सेवा करें उन गोपियों की ऐसी सेवा करें यदि किसी के हृदय में लोभ तो वेद धर्म से वेद लोग धर्म सबको छोड़ करके कृष्ण का वो भजन करता है। जैसे किसी आदमी को धनी देख करके हमें लोभ होता है कि मैं भी ऐसा धनी हूं तो वो क्या करेगा उसके घर में नौकरी करेगा। नौकरी करने का तात्पर्य है कैसे ये पैसा कमाया उसके गुरु रहस्य को जान करके हम उस सब प्रैक्टिस को जान लेंगे तो नौकरी छोड़ करके हम भी वैसा तथा तो बिजनेस करके वैसा हो जाएंगे और ऐसा ही होता है। ऐसे ही लोभ उत्पन्न होने पर गोपियों के भाव की अमृत में लोभ किसी को उत्पन्न हो जाए तो वेद और सब धर्मों को छोड़ करके एकमात्र गोपियों के अनुगत्य में वैसा दिन रात भजन करता है। राजा मुगमा के तारे भजे जय जन से जन पाए भजे भजन कर उनको न जोगी न तपस्वी न कर्मी न कोई भी दूसरा भजन करने वाला कोई भी उनको ब्रज का ब्रज के जो भजन निरंतर है नहीं उनको पा सकता केवल मात्र राधा अनुगा जिनके अंदर में राग है ऐसे राधा जो गोपियां हैं उनके अनुगत्य में उनका फॉलो करने से अनुसरण करने से ही हम भजन निरंतर को ब्रज में पा सकते और किसी भी उपाय से हम उनको नहीं पा सकते। यूं ब्रज में जितने भी हैं सख दास्य बात्सल्य और मधुर इन चार लोगों का अनुसरण करने पर ब्रज के हम कृष्ण को पा सकते हैं। किस रूप में पाएंगे दास्य सख बात्सल्य इत्यादि में पा सकते हैं किंतु गोपियों ने जैसे पाया वैसे हम लोग नहीं पा सकते। ब्रज लोग के कौन भाव लय देख बजे भाव जिनके देख पाइया कृष्ण पाए थे यदि मरते समय अजामिल भजन करने के बाद बैकुंठ के दूतों को देख करके और उनके भाव में तन्मय हो गया तो उसको बैकुंठ की गति मिली और उसका चतुर्भुज रूप हो गया। गज जो था गज और भी भक्तों का देखते हैं जो चिंता लेकर के भजन करते हैं उनका वैसा ही होता है। कोई साधक थी अथवा कोई ब्रह्मवादी ऋषि भगवान को निराकार देख करके और वैसे ही चिंता करते हैं अंत में उनको ऐसे ही पा जाते हैं। कंस आदि ने भी अभी अगले श्लोक में बतलाएंगे भक्त महाराज का उदाहरण देकर के हमने समझाया। भक्त महाराज जी 7000 या कितने वर्ष तक उन्होंने संसार किया और उनकी युवावस्था वो थी युवावस्था में 60,000 वर्ष की उम्र में संसार को और एक बहुत दिन तक भजन करते 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 अंत में एक हिरणी के प्रति छोटी सी बच्ची हिरण की और उसके प्रति उनकी आसक्ति हो अब वो आसक्ति होते होते इतनी हो गई भजन करते करते उनकी गोदी में बैठ जाता अपने सिर से जिसमें अभी सिंह नहीं निकली खुजला था और कहा कि हमें त्याग करो गोदी में करते करते अपना भजन भूल गए ध्यान करते तो हिरण का चिंतन होता अंत में उनका उसी समय में काल आया और काल उपस्थित होने पर उसी का चिंतन कर रहे थे इतने में काल आया इसलिए हिरणी जैसे बन गए और हिरणी बन करके दूसरी जगह भी गए ऐसे ही और सब जगह देखा जाता है। इसलिए मरने के समय में जिस चीज के प्रति आसक्ति रहेगी उसका चिंतन होगा वैसे ही चलते। बहुत से लोग धन के लिए चिंता करते 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 मरते हैं, कैलाश एक था वैसे कैलाश। तो मरने के बाद में वो सांप होकर के जन्मा, क्योंकि जब से जैसा था ना सांप की रक्षा करने के, धन की रक्षा करने के लिए सांप। लड़कों ने देखा कि ये सांप कहां से आ गया, तो उन्होंने उसको मार डाला, अपने पिता को ही मार डाला। तो फिर वो कुत्ता होकर के आ गया, कभी बिल्ली होकर के आ गया, कभी कुछ होकर के आया और पहरा दे घर का। ऐसे ही मरने पर होता है, जिसकी जैसे आसक्ति होगी। इसलिए कृष्ण में आसक्ति होने से कृष्ण के बच गए। इसलिए ऐसा कोई चीज संग्रह नहीं रखना चाहिए जो अंत समय में उसी के आसक्ति में डूब करके उसका स्मरण हो और मरते समय उसी का चिंतन हो, नहीं तो ऐसा। गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जन जन वापी स्मरण तजंते ते कलेव। मरते समय में, शरीर छोड़ते समय में जब जो व्यक्ति जिस चीज की चिंता करेगा, कामी पुरुष यदि स्त्री का चिंतन करता हुआ मरेगा तो वो स्त्री बनेगा, और स्त्रियां यदि पुरुष का चिंतन करेंगी तो वो कोई बाघ की चिंता करेगा ना तो वो बाघ है। क्रोधी महाक्रोधी आदमी होगा ना, महाक्रोधी तो वो सांप या बाघ होगा। ऐसे ऐसे सब चीजें व्यवस्थित हैं। इसलिए इस सब को छोड़कर के भगवान में चिंतन करना चाहिए। भगवान का सबसे सुंदर रूप है कृष्ण रूप, तो कृष्ण रूप चिंतन करना। कृष्ण का भी मत चिंतन करो, नहीं तो कृष्ण का शरीर जो हो जाएगा। कृष्ण की जो सेविकाएं और सेवक हैं उनका चिंतन करो तो गोपी या रूप होकर के जन्म होगा, तब उनकी सेवा भी, नहीं तो कृष्ण हो जाएगा तो फिर कैसे होगी। इसलिए कृष्ण का शरीर मत करो, कृष्ण का चिंतन अधिक मत करो। कृष्ण के सेवा करने के लिए जो सेवा करते हैं या करते हैं उनका चिंतन, इसीलिए ये लगता है। इसलिए ब्रज लोग के कौन एक भाव ने, ब्रज लोग का कृष्ण का भाव मत लो, उनका भाव लेने से कृष्ण जैसा हो जाएगा। इसलिए ब्रज लोग जो कृष्ण के सेवक हैं सेविकाएं हैं उनका कोई भाव ले, सर्वोत्तम ब्रज में भाव है गोपियों का, इसलिए गोपियों का भाव लिया जाए। तो मरने के बाद में साधन भजन करने के बाद में सिद्धि प्राप्त होने पर गोपियों जैसा सुंदर शरीर मिलेगा और उस शरीर के द्वारा कृष्ण की सेवा। किंतु ये एक जन्म दो जन्म की बात न जाने कितने जन्म लगे, ये भजन के निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। दृष्टांत उपनिषद श्रुति का दृष्टांत दिया वो बृहत भारत में बड़ा पुराण का बृहत पुराण उपनिषद, उपनिषदों के लिए राजमार्ग के भज पाई जो ब्रजेंद्रनंदन, वो जो श्रुतियां जो कि कृष्ण को पाई थी गोपी बन करके, वो स्वयं ही श्रीमद् भागवत में श्रुति स्तव में अपना परिचय दे रही है। हम क्या थी और कैसे भजन किया और हमारी परिणति क्या हुई, इसके संबंध में हम उपनिषद के मंत्र, उपनिषद का मंत्र देवता या देवी रूप में होता उस अधिष्ठात्री मंत्र। ये हमारे साधारण शब्दों के समान ही, क्योंकि कृष्ण के मुखारबिंद से या श्वास से ये श्रुति मंत्र निकले, तो कृष्ण स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, ऐसा ही
चेतन
स्वरूप, चेतन है, आत्मभूत है। आत्मभूत माने क्या, अभी अभी श्लोक आएगा उसमें बतलाएंगे। आत्मभूत है अर्थात कृष्ण ही अवतार लिया है, या तो कृष्ण ने अवतार लिया है या अपने भक्तों का अवतार उसमें कराया है, न उनकी शक्ति का अवतार होगा किसी न किसी रूप में उनका, इसलिए इनको आत्मभूत कर। तो वो श्रुतियां कह रही हैं निहितम निहित मरुण मनो अक्षर दीर्घ योग योग दीज जन्मुन उपासते तदा योग अपी तदा अयो अपी जयुस्मरणा श्री गेन्द्र बोधि दंड विशक्त धियो वयम अपि ते समान समदिशो अंधेशो जस निद्रित माने संयम करना एक आग्रह। हमारी इंद्रियां हमारे संयम में नहीं है। अभी क्रोध आएगा तो क्रोध को कंट्रोल हम नहीं कर सकेंगे, क्रोध हमारा कंट्रोल कर देगा। और ऋषि मासी लोग जो है काम क्रोध लोभ मद मोह और समस्त इंद्रियों को अपने वशीभूत करके जब इच्छा आगी तो क्रोध होगा, नहीं तो क्रोध नहीं होगा। जब इच्छा होगी तो कोई कामना होगा, नहीं तो कामना नहीं होगा। लोभ इच्छा होगी तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं होगा। उस पर कंट्रोल रख। तो वही कह रहे हैं जन मुनया जो मुनि लोग हैं मननशील हैं मंत्रों पर मंत्रों का अधिष्ठात्री रूप में बन जाते हैं या उनकी उपासना करते हैं मुनि लोग। निहितम मर्म प्राण जो है मर्म माने वायु, वायु कौन पंच वायु, उसमें में प्राण जो वायु है वो प्राण वायु को मन को और अक्ष माने समस्त सारी इंद्रियों को वशीभूत कर जैसा चाहते हैं वैसा ही प्राण को जय कर लिया, लेकर के यहां पर रख दिया, हजार वर्ष तपस्या कर लिया, यहां से लेकर के उठा करके वैसे योग के प्रभाव से यहां पर कर देंगे। शरीर एकदम ऐसा नहीं मरेगा भी नहीं, कोई स्पंदन नहीं, और समस्त इंद्रियों को अपने वशीभूत करके मन को भी एकाग्र करके शांत कर देंगे। वायु को शांत करना सहज है, कंट्रोल करना, किंतु मन को नहीं, किंतु उसको भी कंट्रोल करके दृढ़ योग जुजो दृढ़ता से योग से युक्त होकर के भगवान में अपने को युक्त करते हैं। क्या हम ब्रह्मास्मि एक प्रकार से ब्रह्म निराकार है, अपने को निराकार कल्पना करके और एकदम दृढ़ता से अपने चित्त को उसमें लगा दे। तब अब उनको क्या करते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं, अगर तो ब्रह्ममय बन जाते हैं। तद अरोपि जय स्मरणा और उनके जो अरि हैं कंस जरासंध इत्यादि या उनके दूसरे दूसरे अरि वो उनका स्मरण करके किनको ये निरत वच्छन्न ब्रह्म को ये चिंता किया जो मुनियों ने और आर्यों ने अरियों ने उनको देखा कि ये कृष्ण एक नंद बाबा का या
जो कछ को
इनका सुंदर था वसुदेव का ये मनुष्य है ये अवच्छिन्न
तो ये तो लौकिक
लौकिक भाव से सर्व समझ रहा है, इसलिए उस अलौकिक ब्रह्म को भी वो लोग अलौकिक रूप से देखा और इन शत्रुओं ने देखा कंस इत्यादि। हमारा शत्रु है लौकिक व्यक्ति है, इसके 3.5 हाथ का शरीर है और मारेंगे तो दड़ा दबा देंगे तो ये मर जाए।
माया परिचिन्न
माया परिचिन्न ये ब्रह्म के रूप में देख करके किंतु ये हमें मारना डाले, इसको कैसे मारे, दिन रात उसी की चिंता करते 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 ब्रह्म को अथवा डर से स्मरण करते करते कहीं मार न दे, अब न मारे अब न मारे अब न मारे, कम से जैसे चिंतन कब वो पैदा हुआ कब पैदा हुआ, बस इसी की चिंता करते 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 फिर वो कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, गोकुल में गए, उनका रूप सुना और उसी की चिंता कर रहा है। और करते 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 जब कृष्ण आए रणभूमि में यहीं पर रंगशाला में उनको देखा सक्षा, अरे वो यही है वो, उसको काल के समान देखा, अब एक सेकंड के लिए नहीं भूल रहा है, कैसे मारूं या मरूं, हमको मार न डाले, चिंता करते 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 और उसी समय में काल आया और कृष्ण ने उसी समय में खींच करके उसे पंचत्व को प्राप्त कर दिया। वो चूंकि उनका स्मरण कर रहा था किस रूप में, जड़ रूप में, परिच्छेद रूप में कर रहा था, तो भी उसको क्या हो गई, वो गति मिली जो कोई इनको इतने कष्ट से मिली, जिन्होंने अपने मन को एकाग्र किया, इंद्रियों को एकाग्र किया और अपने प्राण को भी एकाग्र किया और हजारों लाखों कोटि वर्ष में उस ब्रह्म को पाए। और ये थोड़े दिनों में ही इनकी चिंतन करते करते स्मरण करने से निरवच्छिन्न वो भी जड़ समझ करके किया तो भी उनको ये प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हो गया, उसी चीज को प्राप्त हो जिसको मुनि लोग इतना कष्ट से पाए। स्त्री भुज उगेन्द्र भोग भुज दंड दिशा से अरे वही जो ब्रह्म जिनके लिए निर्विशेष भाव को प्राप्त हुए अरि लोग और मुनि लोग, उसी की ब्रज की स्त्रियां, स्त्री माने ब्रज की स्त्रियां, सब समय याद रखो ये वेद की मंत्र श्रुतियां ये कह रहे हैं, कहने वाली वो अपनी अनुभूतियों को बतला रहे, उसी को जिसको ब्रह्म और ये लोग ब्रह्म के रूप में पाए शत्रु और मुनि लोग, स्त्री उरुगेंद्र भुज दंड वही वर्ग की स्त्रियां उरुगेंद्र को उरग माने सर्व
वासुकीनाथ के शरीर के समान गोल गोल
और उसमें इंद्र माने श्रेष्ठ श्रेष्ठ सर्व कौन वाष्प इत्यादि वाष्प उसका ये क्यों दिया सर्प ऊपर से नीचे की तरफ में पतला होता चला सुगोल होगा बहुत ही सुशीतल होता है। सांप का बीज तो बहुत गर्मी माने जलाने वाला होता है किंतु सांप
ठंडा
सॉरी बहुत ही ठंडा होता है उम्र और कितना कैसा होता है वो सुख उम्र उसमें हार नहीं है बहुत कम है। हम लोग का यहाँ दबाने पर हार आएगा यहाँ पर दबाने से भी है यहाँ पर भी कड़ा है यहाँ उसका कोई भी अंग तो उसका कृष्ण का हाथ कैसा है भुजगेंद्र भोग भोग माने यह शरीर जैसा सबका शरीर आकृत होता है ऐसा कृष्ण का शरीर सुकोमल है। किंतु सचमुच में ये उपमा तो ठीक नहीं है कुछ हद तक जो उपमा की चीज है वो गोलाई और ऊपर मोटा नीचे धीरे 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 पतला और सुशीलता सुशीतलता इन्हीं चीजों को कोमलता को दिया। कृष्ण के हस्तकमल भी ऐसे ही है
ऐसे
और देख करके गोपियों के हृदय में कामना उठी कि इनको कैसे प्रसन्न करें तो वो प्रसन्न कैसे होंगे यदि गोपियों के गले में हाथ डाल दिया रास के समय में नित्य करते हुए और उन हाथों से गोपियों की चरण की सेवा यदि कर दी उन हाथों से गोपियों के मुखारविंद में स्वर्ग के जो कण हैं उनको पहुंच लिया अपने पीताम्बर से तो कृष्ण को अधिक आनंद होता है इन क्रियाओं से। तो उन लोगों की इस प्रकार से कृष्ण के प्रति यह भावना है उसमें भी सप्त सप्त भी सप्त विशेष रूप से आसक्त सप्त माने आसक्त अत्यंत आसक्त है दिन रात उसी की चिंता करती है कैसे ये इसकी प्राप्ति हो और कृष्ण सुयोग देते हैं रास में या औसतों से ये परब्रह्म है। ब्रह्मा के ध्यान में भी वो नहीं आता वो हस्तकमल या चरण कमल और ये गोपियां साक्षात रूप से ये अभी जो दोनों को बतलाया अरय और मुनि लोग इनको ये सब का स्पर्श नहीं होगा और ये उनको परिच्छिन्न जान करके भी गोपियां उनको परब्रह्म नहीं मानती है कोई अपरिच्छिन्न वो भी कृष्ण ही अपरिच्छिन्न किंतु इनको लौकिक संबंधों की भांति प्रियतम जान करके साक्षात रूप में कहते हैं कि ये चरण ये जो आपके हस्त कमल है हमारे सिर पर रखी
है
सिर सिद्धे न सी कर
स्वयं अगुरु मूर्धना धनस्य तदा।
और वही अगुरु के समान आपके हाथों में जो सुगंध है वो हमारे साक्षात रूप में चाहती है, ध्यान इत्यादि हम नहीं करना चाहते। हमारा हृदय वृंदावन है, आपके चरण कमल शरीर और हस्त कमल सब वृंदावन में उसको लेकर के बताए। हम आपकी चिंता करने से हम कुछ नहीं सुन पाए, एक तरह से गोपियां रहती हैं। तो ये कृष्ण के हस्त कमलों का प्रति अत्यंत आसक्त है ये गोपियां और उनकी सेवा करती हैं कृष्ण की। हम भी वो ये वेद मंत्र की ऋचाई के जो देवियां या देवता है, हम भी ते समान समदृशो अंधिशरोज सुधा आपके चरण कमलों की सेवा उन्हीं की भांति समदृशो, उन्होंने जैसे उनकी सेवा की है कृष्ण की उसी भांति से समान उसको प्राप्त किया हम लोग उसी रूप में जैसे गोपी में। अर्थात गोपी का शरीर और गोपी का भाव धारण करने का नाम है समर्पण। इसी को प्राप्त करके ब्रज में वही मंत्र की जो देवियां हैं और ऋचाएं हैं उसका भी ठाकुर देवता है। वो ब्रज में ये गोपियां थी कौन थी? एक तो राधा जी का कायल वो नित्य सिद्ध परिकर और साधन सिद्धु में ये सूतियां हैं। इन सूतियों ने इसके बाद में क्या किया? बावन पुराण में लिखा, बड़ा पुराण में लाखों वर्ष तक इन लोगों ने तपस्या की एकांत निर्जन स्थल में, वृंदावन में ही किया। कहीं वृंदावन को छोड़कर के नहीं होगा, वृंदावन में रह करके उनकी उपासना लाखों कोटि वर्ष तक किया, बिना खाए पिए निराहार कर दिन रात वही गोपाल मंत्र और दूसरा कोई उपाय नहीं, बस गोपाल मंत्र का उच्चारण और अंत में काम गए दोनों के संजोग से वही उपासना करते 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 आकाशवाणी हुई लाखों कोटि वर्षों के बाद में, तुम लोग क्या चाहती हो भर मांगो, मैं तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण करूंगा। इन लोगों ने वाणी को सुन करके गल में हाथ जोड़ करके बोले, ये प्रभु आपका दर्शन तो हम नहीं पा रहे हैं किंतु जिनकी उपासना मुनियों ने हजारों वर्ष तक तपस्या करके और अपने ये सब चीजों को दमन करके जिनके चरण कमलों का केवल दर्शन नहीं पाया वो उनके निर्विशेष रूप को प्राप्त किया है, इनका एक निर्विशेष भाव। और आयोजन में शत्रुओं ने भी उनकी चिंता करते 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 उसी प्रकार से उनको पाया, उनको साक्षात रूप से गोपियों ने अपने हृदय पर धारण करके उनके चरण कमल उनकी सेवा की और कृष्ण को अपनी सेवा से वशीभूत कर दी। यहां तक कि गोपियों की पर ब्रह्म सेवा कर रहे हैं, उनको तृप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। हमको यही लालसा है कि हम भी उन्हीं के समान भावना प्राप्त करके और शरीर प्राप्त करके, गोपी शरीर और गोपी भावना प्राप्त करके आपकी सेवा उन्हीं गोपियों के समान ही प्राप्त कर सकते। कृष्ण ने कहा, भाई तुमने बहुत दुर्लभ कर्म, आज तक ऐसा वर हमसे किसी ने नहीं मांगा, तुम लोगों ने ये वर मांगा, है तो बहुत कठिन किंतु होने पर भी तुमने कठिन तपस्या भी और आराधना भी, जाओ तुम और तुम लोगों का यह फल, तुम लोगों का यह भाव मैं तुमको इसी दूंगा, किंतु अभी भी कुछ बाकी है। अब तुम लोग ब्रज में गोपी होएगी कितने दिनों के बाद में, अभी कुछ और साधन करो, अभी 10-20 जन्म तक अभी साधन करो, 1000 जन्म साधन करते 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 तुम्हारे अंदर में जो अभी कच्चापन है वो दूर होगा। अष्टकाली लीला का जो गोपियां हमारी करती हैं अष्टकाली सेवा, उसका चिंतन करो उनके भाव में कहां मिलेगा, मिलेगा कहां। पति भी तुमने कर दिया, शंकर जी ने पार्वती जी को ये कहा और पार्वती जी ने नारद जी को ये बताया, तुम शंकर जी के पास या नारद जी या पार्वती के पास में जाओ और इन चीजों को तुम लोग समझ, और फिर दिन रात जैसे हमारा वजन किया, अब उस भाव से, अब हमारा भाव छोड़ दो, गोपियों का भाव लो, अब गोपियों के भाव से ऐसा वजन करो, होते 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 तुम्हारी भावना की सिद्धि होगी, तब तुम लोगों की पहले स्वरूप सिद्धि होगी और उसके बाद में
वस्तु सिद्धि।
सब सिद्धि होने के बाद में इसी जन्म में ही तुम लोग कभी कभी हमारा दर्शन उसी रूप में करेंगे और उन गोपियों का भी दर्शन करेंगे, और कुछ दिनों के बाद में जब तुम्हारी वस्तु सिद्धि हो जाएगी, पूर्व जन्म का कर्म फल सब मिट जाएगा, सुख दुख सब, और एकदम भावना एकदम बिगाड़ हो जाएगी, तो वस्तु सिद्धि में तुम्हारा ब्रज में गोपी के रूप में जाएगी और वहां पर नित्य सिद्ध गोपियों का संग होगा, उनके अनुगत्य में सेवा करेगी, तब तुम्हारी भावना की सिद्धि होगी, और किस पर भी नहीं होगा तो उसकी मैं खुद व्यवस्था करूंगा, जोग माया को आदेश दे दूंगा वो कर। तो उन्होंने जोग माया को आदेश दे दिया, जोग माया ने क्या किया, पहले तो कृष्ण के साथ में संग नहीं होने दिया, उनका विवाह करवा दिया, उनके बच्चे भी हो गए और उन्हें लगा, किंतु कृष्ण के प्रति लोभ रहा, जब कृष्ण ने बंसी बजाई राज पूर्णिमा के दिन तो उनके पति ने उनको घर में आ गए, अब तो विरह के मारे प्राण उनके निकल, हमको किसी विषय के लिए दुख होता है किंतु प्राण नहीं निकलता, और उनका विरह ऐसा एकदम प्राण निकल आए, प्राण निकलने पर कृष्ण वहीं पर उपस्थित होकर उनको दर्शन लिया और दर्शन देकर के उनको रात में पहले पहुंचा दिया, जब जब जिसका ऐसा हुआ तब तब, एक ही दिन में ऐसा नहीं, किसी का 8, 10, 20, 50 कल 10, फिर ऐसे करते करते ब्रह्मा की आयु की रात्रि थी, इतने दिन की आयु उस रात्रि में थी, इसलिए उसी समय में ये सब लोग वहां पर सिद्धि करके और गोपी बन करके सुख रूप में उनकी सेवा, और ऐसे ही बदलाया उनको, जो ऋषि चरी गोपी थी, ये तो
ऋषि
सूती चरी, और ऋषि चरिया भी ऐसी दंडकारण्य में 60,000 ऐसी कितने कितने होते, एक उदाहरण ऐसे न जाने कितने ऋषि होंगे, ये जोथ की है, एक जूथ में मान लिया कि ये प्रभुपाद का कोई जूथ होगा, गुरु जी का जूथ होगा, वो अभी सब तैयार जूथ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जो श्रोता हैं जिनको किसी को लोभ हो गया, लोभ मान जाने के बाद में कोटि कोटि में से ऐसे करते 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 अभी संग्रहित करेंगे जूथ, और जूथ होकर के तब फिर वो दंडकारण्य निवासी जैसे हो करके तब भजन करेंगे, निश्चिंत रूप से कोई भी विघ्न बाधा नहीं आए, और तब फिर किसी न किसी प्रकार से उनको सुयोग मिलेगा तब वो जाकर, जैसे आदमी बचाव करता है ना, वैसे ही एक एक को कहां कहां से आदमी संग्रह करता है, ऐसे गुरु वैष्णव लोग संग्रह करके ऐसी भगवानों का जूथ बनाते हैं, कोई अजौथ की भी अकेले भी भाव को सुन करके संसार से मोह नाता सब छोड़ दिया और छोड़ करके अकेले यमुना के तट पर, जैसे वो कालिंदी कर रही थी, वो थी विशाखा जी, विशाखा जी का एक अंश, 1,000,000 वर्ष तपस्या की और वो वृद्धि वृद्धा ब्राह्मणी जैसी थी, उसमें भी उनका कितना तेज और कितना सौंदर्य, अर्जुन गए पानी के खोजने के बहाने यमुना जी पर उसको देखा, अर्जुन ने वहां पर प्रतीक्षा की, कुछ दिनों के बाद में वो कुछ जागृत हुई तो पूछा कि देवी आप कौन हैं, तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं कौन हूं,
कालिंदी,
मैं गोपियों का भाव प्राप्त करने के लिए स्थान पर मैंने कितने कल्पों से मैं सेवा की आराधना कर रही हूं, मेघा जी कृष्ण तो यही पर है, तो मैं कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं, कृष्ण को ले गए, कृष्ण को देखते ही हाथ जोड़ करके स्तव करने लगे, और फिर उनको कृष्ण ने वर दिया, वर दे करके गोपी का शरीर निभा करके और उनको लेकर, इसलिए गोपियों का भाव इतना सुलभ नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। अब यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी संक्षेप में सूत्रों में इस दुरूह श्लोक का अर्थ करते हैं, ये जो हमने हम लोगों ने जो अर्थ किया है श्रीमद् भागवत की टीका और अर्थ करने वाले कम से कम तो 60-70-100 होंगे, किंतु किसी ने इसका अर्थ इस प्रकार नहीं किया। ये अर्थ कौन किया?
चक्रवर्ती ठाकुर
सनातन गोस्वामी पाद ने महाप्रभु की इच्छा से किया और उनके से ये जीव गोस्वामी जी और अंतर्वर्ती विशेष रूप से अर्थ किया, महाप्रभु जी की कृपा से ऐसा अर्थ किया, तब ऐसा अर्थ संभव है। तो ऐसा अर्थ बहुत कठिन है। श्रीमद् भागवत में श्रुति स्तव जो है वो सबसे कठिन लोग पढ़ते हैं, वो समझ में नहीं आता, किंतु इसका इतना सुंदर अर्थ है लोग कैसे समझे यदि ये टीका पाठ नहीं हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जीव गोस्वामी अर्थात सनातन गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों, उसमें तो विश्वनाथ चक्रवर्ती छात्र बाहर है, किंतु दोनों की टीकाएं ऐसे ही हैं। गोस्वामी इन दोनों का भाव लेकर के उन्हें वर्णन कर रहे हैं। समदृश शब्द से ही भावे अनुगति, समदृश गोपियों के समान
दृष्टि,
दृष्टि क्या दृष्टि, क्या दृष्टि, कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम है और जैसे उनकी भावना थी वैसे भावना, वैसा ही रूप, ऐसा ही गुण, ऐसी ही क्रियाओं सब का वो अनुगमन किया उन गोपियों ने। अनुगति समान शब्द कहे स्मृति गोपी देह प्राप्ति, समान माने उनकी गोपी की शरीर की प्राप्ति माने सिद्धि, सिद्धि हुई क्या हुई, समान सिद्धि, सिद्धि क्या हुई, भाव की सिद्धि, अर्थात वैसा ही रूप उनको मिला, ऐसा ही उनका भाव हो गया, ऐसा ही सब। कभी कभी हम साधकों को देखते हैं, साधकों में ये भाव कुछ दिखता है। हमने सुना है भक्ति विनोद ठाकुर के लिए आप लोगों से कभी कहा नहीं, साधन कर रहे हैं वहां गोद्रुम में स्वरूप कुंज में
सनंद सुखद कुंज,
वहां पर रात में स्वाभाविक रूप से यानी क्यों गोपियों जैसे कपड़े पहन लिए और रात में छोटी सी कड़ाही पर पूरी बनाने, हलवा बनाया, सब्जियां बनाया,
छोटी कड़ाही में हो जाएगा इतने तो
क्या ने कैसे करते थे वही समझ, और बना रहे हैं पूरी इत्यादि से कर, ऊपर का होश नहीं है जब मैं कौन हूं, एकदम भाव में तन्मय करके एकदम लगा दिया और मानो कृष्ण को राष्ट्र में थक जाने के बाद में गोपियों को और कृष्ण की सेवा कर एकदम ऐसा, किंतु कोई नहीं, जब बस एक बार कौन उनकी पत्नी ने या किसी ने देखा, किस तरह से साधन अवस्था में ही भक्तों ने ऐसा कुछ देखा, साधन अवस्था में ही रामचंद्र खान ने देखा, श्रीनिवासाचार्य जी शरीर को छोड़ करके और वृंदावन में आए अपनी स्वामी जी की सेवा में, श्रीनिवास आचार्य जी 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 5 दिन हो गए नहीं लौटे, लोगों ने सजा दिए मर गए, रामचंद्र जी उनके शिष्य आए बोले मरे नहीं है, तुम लोग इनके शरीर को और हमारे शरीर की रक्षा करना, मैं जरा जा रहा हूं खोजने ढूंढने की, बस उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया और चले आए वृंदावन में आत्मा के शरीर से, गोपी शरीर से, जब खोजते खोजते पता चला अभी सखियों के सहित कृष्ण जी राधा जी आदि के सहित में वृंदावन में जमुना में क्रीड़ा कर रहे, वहां आए देखा कि सभी लोग बड़े व्यस्त हैं कोई चीज ढूंढ रहे हैं, ये अपने गुरु जी के रूपी सखी के पास में गए, भाई क्या हो गया, तो नाक राधा जी का नाक का बेसर गिर पड़ा, सब लोग वो भी ढूंढने में लग गए, सब लोग माटी पे खोज रहे हैं दौड़ कर और वो बीच में ही कमल के गंडी में कहीं ऊपर में ही
अटक गया,
अटक गया, इनके हाथों में छत आ गया, इन्होंने दे दिया और लेकर के अपने गुरु की सखी को दे दिया, उन्होंने क्रमश विशाखा जी को दिया, उन्होंने ललिता जी को दिया और ललिता इत्यादि सब जी ने कौन किसने पाया, तो सबने कहा जो वो नई सखी उसको बुला लाओ, लाए उसके सिर पर हाथ रख दिया, बड़ी प्रसन्न भाई की वांछा सिद्धि हो। इसके बाद में वो लीला समाप्त हो गई तो शरीर छोड़ करके फिर शरीर में प्रवेश कर। किसी किसी भक्तों का देखा जाता है लीला में प्रवेश किया तो उसके अंगों पर भी अभी इत्यादि कुछ नहीं पड़ता। जब भी यह बुजुर्ग की गुरु महाराज ने इसको लिखा है बुजुर्ग की गुरुगिन है सब अच्छा था। जब उनका अपराधी शरीर है तो यह शरीर से कुछ भी कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं मैं सिद्ध हो इसलिए ऐसा कहते हैं। इसलिए यदि ऐसा संभव है साधन शरीर में उसके लक्षण भी पड़ने लगते हैं। इसी तरह से साधन करना चाहिए चौबीसों घंटा में चौबीसों घंटा भी उसका हो जाए तब फिर इसकी प्राप्ति होगी और फिर वो साधन अंगी पद्म सुधाए रहे कृष्णासंगा अंगी पाद पद्म अंगी सरोज सुधारा चरण कमलों की मधु अमृत की सेवा प्राप्ति होती है अगर उनके कृष्ण के चरणों की अंगों की सेवा का संतोष हो गया। विधि मार्ग ना पाइए ब्रज कृष्ण चरण भाई ये सब विधि मार्ग में नहीं मिलेगा। विधि मार्ग में नहीं हट करके हम अपना कर्तव्य मान करके ठाकुर जी की सेवा करते हैं। समय मिल गया तो कर लिया समय नहीं मिला कभी नहीं किया। क्षेत्र में लोभ नहीं है इस चीज को यह विधियां किनके लिए है विधि मार्ग एक आदमी को रुचि नहीं है वो सवेरे 6 बजे उठता है क्योंकि रुचि नहीं है 7 बजे उठता है प्रवचन में आरती में या कीर्तन में नहीं आता उसके लिए विधि होती है। अच्छा भाई नहीं आता है तो उसके लिए ये दंड है। ये जितने भी दंड संहिताएं हैं किनके लिए जो करते हैं स्वाभाविक रूप में जिनको प्रवृत्ति अच्छे कर्म बने उन दुष्ट लोगों का शरण उन लोगों के लिए सरकंड इत्यादि का विधान कचाने किनके लिए है ऐसे लोग बदमाशों को शासन करने के लिए इसको धर्मकरण न क्या करते एक बार में कोई गया तो बहुत सारे तुम्हारे पीछे बैठे महात्मा जी आप इसलिए आपको आने की क्या जरूरत है कम करने तू तो कैसे आए रिपोर्ट में हमारा केस था धर्म नहीं करने देते हैं उनके लिए ये बनाए तो हम लोग इसीलिए आए हैं कि धर्म का विचार होता है इसीलिए दुष्ट लोगों को धर्म करने के लिए हम बताने के लिए आए तुम लोग इसलिए आए चोरी करने के लिए ना किसी लिए करने के लिए तो विधि मार्ग किस लिए बनाए जिनको रुचि नहीं है जो भजन नहीं करना चाहते उसके लिए हमारे ऋषियों ने कहा दिया 1 लाख हरिनाम करना ओके तो 1 लाख समय तो ये 24 घंटा में भी करेगा तो उसका नहीं होगा क्यों उसको कहीं बातचीत करना है उसको खाना है स्नान करना है सोना है और सब बात करना है और उस बच्चे खाने 1 लाख नाम से करना चाहे जो कुछ और मन संयोग कहीं ना कहीं यदि करता है धीरे 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 वो करता है। अच्छा तुम पहुंची नहीं है ना तो अभी सवेरे आकर के बैठना कुछ लोग कहेंगे हम तो बंगला चित्र नहीं जाते हम क्या करते हैं क्या आदमी इसलिए नहीं जाते
છે.
પ્રભુ પૂછે રામાનંદ કરીને ઉત્તર ઉત્તર દેને વાલા મેં નહીં, જો પ્રશ્ન કર રહા હૈ વહી મેરે હૃદય મેં સ્ફૂર્તિ કરા કરતે ઇસ પ્રશ્નો કા ઉત્તર દેના નહીં. ઉત્તર એસે પ્રશ્નો કા ઉત્તર સાધારણ વ્યક્તિ કે લીએ દેના आप लोग भी महाप्रभु जी और रामानंद के बीच में जो संलाप हुआ, वार्तालाप हुआ, उसको सुन करके अपने हृदय में धारण करने की चेष्टा. महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे और यहाँ पर कृष्ण नहीं बल्कि राधिका जी बने थे. कृष्ण ही राधिका जी के भाव लेकर और रामानंद जी कौन है विशाखा सखी, इन दोनों में बातें जो होगी वो प्रमाणिक होगी, शास्त्र सम्मत होगी और जगत के लिए कल्याण होगी. इसलिए बिना तर्क के लिए, बिना किसी युक्ति के, बिना किसी नूचू उसको ग्रहण करके उसको धारण करने की चेष्टा. प्रभु कहे कौन विद्या विद्या महाप्रभु जी ने पहले प्रश्न रात भर बातें उतरी किसी. प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्यशा राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आ. हम लोग विद्याएं पढ़ते हैं तरह तरह की विद्या, एक नहीं तरह तरह की विद्या. विद्या माने क्या? विद धातु ज्ञाने, विद धातु
वित्त विद विदा ज्ञाने वित्त विद विचारने वित्त विद सत्य.
बहुत से अर्थ होते हैं विद्या, विचार करने के लिए, जानने के लिए और
वित्त विद विचारने विद वित्त सत्य
जानने के लिए, विचार करने के लिए और ज्ञान के लिए और ज्ञान के अर्जन करने के लिए. सभी विषयों में पित धातु का प्रयोग होता है. ये पित धातु से ये विद्या शब्द बना है. किसी भी चीज को जानने का नाम विद्या है. कोई भी चीज हम जानना चाहते हैं विद्या है, किंतु कौन विद्या विद्या मध्य सार, विद्याओं में भी कौन सबसे विद्या अभिसार है. राय करें कृष्ण मुक्ति बिना विद्या नहीं है. सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में किसी भी विद्या को आरंभ करने के लिए अक्षर का ज्ञान कराया जाता है. अक्षरों में पहला अक्षर कौन है? व्यंजन और स्वर वर्ण है. व्यंजन में है क और स्वर में है अ. व्यंजन वर्ण का भी आदि और अंत स्वर से ही होता है, इसलिए पहला अक्षर ही ये स्वर का लिए गया. इसी को अक्षर यहां से आरंभ हुआ. अक्षर बने क्या? जो वस्तु कभी भी नष्ट नहीं होता, क्षर नहीं होता, परिवर्तन और ध्वंस नहीं होता, उसको कहते हैं अक्षर. कभी भी ध्वंस नहीं. जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं इन आंखों से और इस मन से विचार करते हैं, जो आंखों से भी नहीं दिख पड़ता, आंखों से भी जो चीज नहीं दिखता और मन से भी जो नहीं दिखेगा, या आंखों से और मन से भी दिखता है, वो सब चीज ध्वंसशील. जायते अस्ति वर्तते
अपक्षीयते विपरिणमते विनश्यते
विपरिणमते अपक्षीयते विपरिणमते
विनश्यते.
ये छह उसकी स्थितियां हैं. जायते जन्म, अस्ति स्थिति उसकी हो जाती है, जन्मते हैं ठहर जाते हैं, स्थिति. वर्तते बढ़ता है वो, फिर प्रौढ़ावस्था आ गई और इसके बाद में द्विपरिणिमा थे, धीरे धीरे लगता है क्षय होने लगता है, खाते एकदम अधिक क्षय हो गया और अंत में विनाश। जो कुछ इस जगत में देखते हैं सबका ऐसा है, हमारा शरीर भी, पेड़ पौधे भी, ये जमीन जायदाद पृथ्वी सूर्य चंद्र जो कुछ भी है सब ऐसे ही जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, स्थिति होती है, परिणाम होता है, अंत में खाए होकर के। किंतु जो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है वो कोई वस्तु है, वो निराकार नहीं है, निर्गुण निराकार नहीं है, उसमें गुण है, उसमें नाम है, उसमें क्रिया है। वस्तु मात्र में ही नाम रूप गुण क्रिया है, यहां तक कि हमारी जो छाया होती है उसमें भी कुछ गुण है, उसका नाम भी छाया है। हमारी छाया में धूप से बचाने की शक्ति रहती है कि नहीं, पेड़ों की छाया है उसके अंदर हम लोग किस लिए बैठते हैं, उसमें गुण हुआ नहीं, पेड़ है उसकी ये छाया है इसलिए पेड़ भी है, छाया का गुण क्रिया ये सभी है। इसलिए जो विश्व ब्रह्मांड को प्रसव कर रही है जो शक्ति जिससे कि सबका ये सृष्टि होती है, स्थिति होती है और अंत में उसी में सब कुछ समा जाता है, वो कोई वस्तु है, उसका आकार है, नाम है, रूप है, गुण है, वो दयालु है, बड़ा उदार है, उसमें समस्त अप्राकृत गुणों का वो भंडार है, उसी का नाम है अक्षर। जो कभी भी जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, सब समय आनंदमय है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, सत चित आनंद है, जिसको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता, जिसमें आनंद की परिसीमा है, दूसरों को भी आनंद देता है, वो वस्तु का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए वो सच्चिद आनंद वो है, सबका कारण है, उसका कारण कोई नहीं, अनादिरादि वो बिंदा सर्व कारण, वो सबका कारण, उसका आदि कोई नहीं, वो सबका वही चीज अक्षर, और उसका एक परमाणु स्वरूप ये जो जीव है अनंत कोटि जीव, ये सपने विश्व ब्रह्मांड में सर्वत्र वो है, वो भी है अक्षर, किंतु वो अनवक्षर ये जीव है। गीता इत्यादि में भी बतलाया गया ममई बांसो जीव लोके जीव भूता सुना, इसलिए जीव उनका पार्ट पार्ट, जीव मिथ्या है स्वप्न की भांति और वही ब्रह्म है ये कहने से उसकी अज्ञानता हो जाएगी। जब ब्रह्म को भी अज्ञानता लगती है इसलिए ब्रह्म अज्ञानी है, ये जीव अज्ञानी है। इसलिए अक्षर गीता में दो कहा गया, खर अक्षर, दो पुरुष हैं, एक खर और एक अक्षर। खर कौन है, ये जगत जो कुछ है ये सब खर, खर और इसमें जो अपने स्वभाव से विकृत होकर के गिर करके च्युत होकर के खरत खरक होकर के इसमें भी अपने को इंटेंगल कर लेता है, ये भी अब अपने स्वरूप से खर हो जाने के कारण इसको भी खर कह देता है, किंतु है वो अक्षर। और इस खर से और अक्षर से इसे जीवात्मा को कहा गया अक्षर, इन सबको कहा गया खर, इन खर से और अक्षर से भी वो है पुरुषोत्तम, वो इसलिए अक्षर करने से उस पुरुषोत्तम का बोध होता है। यदि इसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया, ही विद्या है ये विद्या। उस अक्षर को कैसे जाने जाएगा, अपने प्रयास से नहीं जाएगा, ब्रह्म ज्ञान से योग तपस्या रूपी अपने परिश्रम से उनको मिल जाए, इसलिए वेद शास्त्र न महात्मा प्रवचन लभ्यो न मे धया ये मन अवांग मन सो गोचर, ये वस्तु है अवांग मन सो गोचर। हम जो कुछ भी चेष्टा करेंगे इंद्रियों से मन से, मन वहां जाकर के अब फिर लौट आता है, इसलिए मन की चेष्टा से अभ्यास से गति से वो नहीं मिलेगा। सही ज्ञान है देव धन है, भागवत में कहते हैं
तथापि देव पदम
ते देव पदम बुझ
प्रसाद
प्रसाद ले वही जनाति तो भगवान महिन्नो में चंद एक अपि चिरं वचन ब्रह्मा जी कहते हैं। जब तक उस प्रभु की कृपा नहीं होगी, जो पुरुषोत्तम अक्षर हैं, उनकी कृपा नहीं होगी और वो हमको नहीं जना देंगे, तब तक अपने प्रयास से नहीं होगा, लाख चेष्टा करें। अच्छा वो जनाएगा क्यों, किसको जनाएगा, सबको जना क्यों नहीं देता, नहीं उसमें कुछ शर्त। जो कोई अनकंडीशनल रूप में उनको सरेंडर करेगा बिना शर्त के, अपने को समर्पण, आत्मा मन और शरीर तीनों को समर्पण कर दिया, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पण, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, मैं अच्छा और बुरा कुछ नहीं समझता, उत्तम श्रेय किसमें होगा आप बतलाइए, मैं शिष्य शिष्य हम साधिमात्म प्रपन्न, मैं तुम्हारा प्रपन्न होता हूं, अब आप कृपा करके हमारे को बतलाइए कि हमारा कल्याण है, युद्ध करना है या क्या करना है। तब कृष्ण उसी प्रकार से यदि जी खोजते 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 उनको अपनी जब तक चेष्टा करता है तब तक वो छोड़ देते हैं, और जब बिना शर्त के उनके चरणों में आत्मसमर्पण करते प्रपन्न हो जाते हैं, प्रकृष्ट रूप में अपन्न हो जाते हैं उनके, अब जैसा होगा जो होगा आप करें, उस पर जब छोड़ देते हैं तो समझता है कि हमारा कृपा का ये पात्र, बस उसके अंदर में वो स्फूर्ति प्राप्त करा जिससे कि उनको ज्ञान देता है। अब ये ऐसा कब होगा, कोनों से शरणागति साधी नहीं होगी, हम गुरु वैष्णव के यहाँ सबसे पहले शरणागत होते हैं, शरणागत होकर के कहते हैं हे गुरुदेव हे वैष्णवगण मैं आपका शरणागत हूँ, किंतु चाबी और ताला हमारे पास में रहेगा, सब आपका गुरुदेव है किंतु करूंगा अपने मन से, ये शरणागति नहीं। जब अपने मन से करना है तो शरणागत क्या हुआ, इसलिए सब छोड़ करके उन पर ही शरणागत हो गया। एक आदमी ने कहा कि मैं मर रहा हूं, मेरे पर में विपत्ति आई तो मैं कुछ करूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, उसको प्रयास नहीं करना चाहिए, तो तू पहले प्रयास कर ले, देख ले जो तुम क्या कर सकता है। द्रौपदी ने अपना सब प्रयास कर लिया, जो कुछ करना था वो सब प्रयास कर लिया, जब थक गई कोई भी उपाय नहीं रहा, कोई भी उपाय नहीं रहा, असहाय हो गई, बस दोनों हाथ छोड़ दिया, बस हाथ अप्रभु को छत आ गए, एक सेकंड की देरी। उसी प्रकार से यदि जी ये शरणागत होगा भगवान, कैसे होगा, इसीलिए कह रहे हैं कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार, भगवान को जानने के लिए भगवान के प्रति तो शरणागत होते कैसे होगा, वो भक्ति के द्वारा होगा। पहले ये सीखो कहां, वैष्णव की सभा में, वैष्णव के पास में जाओ, भक्तों के पास में जाओ, वो तुम्हें गुरु के पास में ले जाएंगे। और जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्चैते प्रकाशन्ते महात्मा। भगवान के प्रति जैसे तुम भक्ति करते हो, गुरु के प्रति भी वैसे ही भक्ति करो। तनिक कम मत समझो हमको बेचने वाले कौन है,
ये गुरु।
जहां बेचते मैं वहीं पर बिक जाता हूं। यदि वो थोड़ा सा सिफारिश कर दिया ना कि आप अपनी कृपा करके इनको जना दीजिए, तो प्रभु रुच भी जाएंगे, तभी दूध के कारण से वो मान जाएंगे। इसलिए गुरु के चरणों में शरणागत होकर के उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए, और फिर वो हमें बतला देंगे कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता, कैसे कृष्ण कृपा करेंगे। ये भक्ति के द्वारा होगा। इसलिए भक्ति सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 इसके स्टेज हैं, स्तर हैं, 10 स्तरों में होकर के गुजरना पड़ेगा। ये तो कर दिया एक भक्ति, किंतु भक्ति करने से हम क्या समझेंगे, इसलिए बतला रहे हैं आदो श्रद्धा। आदो श्रद्धा से भी ये नहीं होगा। इस श्रद्धा कहां से आएगी, यदि आरंभ करेंगे ना तो हमको सुकृति से आरंभ करना पड़ेगा, आदौ सुकृति। किंतु सुकृति करने से भी नहीं होगा, फिर वैष्णव के यहां जाना पड़ेगा। सुकृति भी वैष्णव और भागवतों के यहां होगी नहीं। इसलिए सबसे पहले संतों के चरणों में किसी प्रकार से ज्ञान अनजान से यदि पहुंचे, उनकी किसी रूप में ज्ञान अनजान में सेवा कैसे भी हो जाए, तो कुछ सुकृति होगी। वैसे पुंज पुंज सुकृति एकत्रित होने पर तब श्रद्धा, ये श्रद्धा बढ़ते 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 हरि कथा श्रवण करते 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 तो दो रूपों में ये श्रद्धा उदित होगी। श्रद्धा का पहला लक्षण ये है, कृष्ण भक्ति करने से ही हमारे जीवन का सब कुछ करना हो गया, ऐसी दृढ़ श्रद्धा। प्राण चला जाएगा तो चला जाएगा, कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। विश्व ब्रह्मांड हमारे विपरीत हो जाए, चाहे हमारा सिर कट जाए, जो कुछ भी होना है सो हो जाए, किंतु भगवान की भक्ति में नहीं छोड़ सकता। ऐसी दृढ़ता निश्चयता का नाम भक्ति श्रद्धा। हरी कथा श्रवण करते 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 ये क्या होने लगे,
अल्लाह करो
पदों जैसे उद्धत। यही श्रद्धा साधु संघ में बैठ कर हरि कथा सुनते सुनते और भगवान और वैष्णव की, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते 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 निष्कपट रूप में, तब फिर साधुओं के संग में सदगुरु की प्राप्ति और उनसे दीक्षा मंत्र इत्यादि ग्रहण करना, और गुरु और वैष्णव की विषम रूप में सेवा करते 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 भजन करते करते निष्ठा उत्पन्न हो, फिर निष्ठा से रुचि, रुचि से आसक्ति, आसक्ति के बाद में भाव, और भाव के बाद में प्रेमा भक्ति। इस प्रेमा भक्ति के द्वारा ही भगवान की जाना जा सकता है। यहाँ पर भक्ति से माने क्या, प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवान का अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए प्रेमा भक्ति तक चलना होगा, साधन करना होगा भाई। यहाँ पर तो कह दिया एक ही, इसलिए दूसरे किसी भी उपाय से ब्रह्म ज्ञान इत्यादि के द्वारा, योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा और जितने प्रकार के साधन है उनके द्वारा भगवान को मिल जाए। जहां पर निर्विशेष ब्रह्म का बात है ज्ञान के की दृष्टि से, वो निर्विशेष है तो उसको क्या जानेंगे, और जानने वाला कोई है ही नहीं, जो जानने वाला है वही जानने योग्य है। वो एक ही तत्व है, ब्रह्म है, न वहां ज्ञान है, न ज्ञेय है, न ज्ञाता है, इसलिए वहां जानने की कोई भी बात नहीं। और वो खुद ही निर्गुण निर्विशेष निरंजन उसको जानेंगे क्या? इसलिए वहां जानने का कोई प्रश्न नहीं है। और जो उपाय है वो सब जड़ी उपाय योग के द्वारा, अर्थात ये शरीर के जो आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि के द्वारा भाई उसको नहीं जाना। भागवत में ऐसे हजारों शब्द हैं और गीता में तो अंत में यही बताई दिया, सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम शरण प्रजा हम ताम सर्व पाप। इसलिए ज्ञान के द्वारा आज तक या दूसरे उपाय के द्वारा कोई भगवान को नहीं जान सकता। इसलिए विद्या में कृष्ण भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ, और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति में भी रागानुगा उसको पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, रागानुगा में भी ये गोपी और कृष्ण को राधा जी को तत्व का जानने का सर्वोत्तम उपाय जिसको अभी बता रहे हैं। सहज रूप में ये सब कैसे होगा? भगवान नाम के द्वारा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम पलव नाश्ते व नाश्ते गति नाम के द्वारा होगा, किंतु कौन से नाम के द्वारा होगा? शुद्ध नाम हो, अनर्थ रहित हो, संबंध ज्ञानी युक्त हो, एक नाम भी कृष्ण को जला देगा, अन्यथा कोटि कोटि जन्मों तक हरिनाम संकीर्तन श्रवण कीर्तन करने पर भी उसे। इसलिए नाम भी वैसा होना चाहिए। कृति कलर मध्य जीवे कौन बड़ो कीर्ति, कृष्ण भक्त बोलिया जहा मैं खन। संसार में बहुत प्रकार की कीर्ति है, विशेष करके आज हम जब विचार करते हैं देखते हैं राजनीतिक जो लीडर हैं नेता बड़ी उनकी प्रसिद्धि होती है, सिनेमा के स्टार आर्टिस्ट बड़े बड़े हैं, हम लोग तो नहीं जानते किंतु जगत के सब लोग उनको जानते हैं। किसी विषय में एक्सपर्ट हुए उसमें भी ख्याति हो सकती है, संगीत है, कोई आर्ट है, कला है, ये सब चीजों में ख्याति हो सकती है, किंतु वो कब तक के लिए है? कुछ दिन पहले अभी पेपर में कि आज भी या कुछ दिन पहले निकला था कि ओलंपिक अभी हो रहा है ना, कहीं ओलंपिक हो रहा है बार्सिलोना जाता, सात वर्ष वाले गए 60-70 आदमियों से 22 लाख रुपया खर्च कर, इनकी झोली में एक भी नहीं हुआ, निराश होकर के ये लोग अब सब सबको दोस्त हैं जो सात वर्ष का 84 करोड़ उसका प्रतिनिधि करने वाले ये लोग गए और एक भी कुछ नहीं गया। अच्छा उसने विचार की ये बात है, आज सभा में कोई कुछ बात हुआ कि पहले कोई ओलंपिक में गया था, खूब उसका नाम हुआ और वो किसी अस्पताल में बिना किसी औषधि के, डॉक्टर भी कोई नहीं देखा, कोई पूछा नहीं, वो मर गया। और एक है वो रिक्शा चला रहे हैं ओलंपिक के आए, जो कि कुछ मिला था रजत या तो, ये बतलाओ तो उनको क्या हुआ? नाम हुआ, होकर के हुआ क्या? उपेक्षित पड़े रहे। अब आज जो राष्ट्रपति हैं जत्थे तत्थे और वहां से निवर्तमान हो गए, बस साथ ही साथ में सब कुछ हो गया। आजकल जैल सिंह कोई थे ना, उनको खूब पूछते हैं ना, इसलिए जगत की प्रशंसा यही तक, देवताओं की भी ऐसी और छोड़ ब्रह्मा तक की उनकी कीर्ति का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कीर्ति मध्य जीवे कौन बड़ा कीर्ति, जीवों में के लिए सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी है? ये विष्णु भक्त है ना, ये कृष्ण का भक्त है, यही सबसे बड़ी, इससे बढ़कर के और की क्यों, इससे दुर्लभ कोई चीज जगत में है ही नहीं, इससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है सारे जीवन के लिए, अनंत काल के लिए उसको सुख और शांति हो जाती है, चिंतामणि उसके हाथ में आ जाती है, इसलिए सबसे बड़ी कीर्ति भगवान की भक्ति है। और सब चीजें हैं ना, नाम के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से अनायासी वह सब सुलभ हो जाएगी, किंतु कृष्ण का मिलना, कृष्ण प्रेम होना बड़ा भारी कठिन है, ये नहीं मिलता, ये सबसे बड़ी कीर्ति है, क्योंकि कृष्ण को उससे वशीभूत हो जाता है। भक्ति कैसी है, भक्ति रेवाइनम नयति भक्ति रेनम दर्शयति भक्ति वसो पुरुष भक्ति रे भूयसी, अर्थात भक्ति के वश भगवान हो जाते हैं, और भगवान किसी भी द्वारा वशीभूत नहीं होंगे, जैसे यशोदा जी के वशीभूत कृष्ण हो गए और बंधन में आ गए, कृपया शीत स्वबंधन। इसलिए आज तक दिखलाया, भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न चटिकया, भक्ति के द्वारा ही भगवान को पा सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है भगवान को पाने के, भक्त्या हम एक या भक्ति के द्वारा ही हम एक मात्र का, किंतु कहने पर भी प्रेम भक्ति के बिना नहीं, ये प्रेम सबका उद्देश्य है प्रेमा भक्ति, इसलिए जिसको प्रेमा भक्ति हो गई वो सबसे श्रेष्ठ। जैसे बतलाया गया ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जगत में जितने लोग हैं उनमें ब्रह्म ज्ञान संपन्न ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ हैं, कोटि कोटि ब्राह्मणों में वेदांतवीत जो ब्राह्मण होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ, कोटि कोटि वेदांतवीतों में भगवान का एक भक्त होता है वो श्रेष्ठ, कोटि कोटि भक्तों में भी एक नारायण का भक्त परम सुदुर्लभ होता है, कोटि कोटि नारायण के भक्तों में से एकांती कृष्ण भक्त बहुत दुर्लभ, कोटि स्वपी महान, और कोटि कोटि कृष्ण भक्तों में से ब्रजरस रसिक एक भक्त परम दुर्लभ, इसलिए कृष्ण भक्त जो होता है सबसे परम दुर्लभ है, भक्त का होना ही सबसे, एक बदलाया गया ना, जो पिता वही धन्य है कि वसुंधरा धन्य है, कुलम पवित्रम जिस कुल में एक वैष्णव पैदा हो जाए ना, वसुंधरा धन्य हो गई, उसके माता पिता धन्य हो गए, जैसे प्रहलाद महाराज अशु कुल में उत्पन्न हो पाए, अशु कुल भी धन्य, माता पिता भी उसके धन्य हो गए, जबकि भगवान के और वैष्णव के विरोधी थे, किंतु वो जय विजय के रूप में पीछे से आ गए, उनका भी उद्धार कर दिया, पृथ्वी धन्य हो जाती है, माता पिता भी कुल भी सब कुछ उनका धन्य, जिस कुल में एक वैष्णव वैष्णव भी जन्म हुई, संपत्ति मध्य जीवे कौन संपत्ति बनी, राधा कृष्ण प्रेम जा से बड़ धनी, संपत्ति किसको कहते हैं, संपत्ति माने धन अर्थ, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, बहुत से लोग धन को तुच्छ करके त्याग करके चले जाते हैं, किस लिए, ज्ञान के लिए वैराग्य के लिए चले जाते हैं, बहुत से लोग, हमने सुना था कि कोई जॉर्ज सिक्स या कौन थे, या जो एक स्त्री के लिए, गरीब स्त्री से किंतु बड़ी सुंदरी से उनको प्रेम हो गया, तो पार्लियामेंट ने कहा,
पंचम जो
पंचम तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट ने, देश के लोगों ने, यदि इस लड़की से शादी करेंगे तो आपको गद्दी नहीं मिलेगी, और यदि गद्दी लेना है तो इसी स्त्री को छोड़ दी।
राजभवन
उन्होंने उस समय में पृथ्वी में कहीं भी सूर्य उनके राज्य में अस्त नहीं होता था, इतना बड़ा विशाल राज्य था उस समय भारतवर्ष में, उन्हीं लोगों का राज्य था, किंतु उन्होंने उसके लिए छोड़ दिया, स्त्री को नहीं छोड़ेंगे हम, राज्य गद्दी इत्यादि छोड़ देते। इसलिए समस्त संपत्तियों में सबसे बड़ी है राधा कृष्ण प्रेम, या से ही बढ़ो राधा कृष्ण के चरणों में जिनका प्रेम है उसे बढ़कर के और कोई धन नहीं। दुख मध्य कौन दुख हाय गुरु ता कृष्ण भक्त बिना बिना दुखे नानी देखिया पर। संसार में सबसे बड़ा दुख कौन है? चैतन्य पुरुष ने रामायण में भी देखते हैं, सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख कौन है? वैष्णवों का, संतों का मिलना ही सबसे बड़ा सुख है, और संतों के साथ में वियोग विछड़न ही सबसे बड़ा, इसमें भी यही बतला है। सबसे बड़ा दुख कौन है? कृष्ण भक्त दिन बिना दुख नहीं देखी पर। माता पिता सकले सकल जन्म पर गुरु कृष्ण नहीं मिले भजो हो दिया। एक हम बकरी होकर के, सुअर होकर के, कुत्ते होकर के जन्म लेंगे तो वहां पर भी माता पिता सुकर सुकरी के रूप में मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा जन्म नहीं है माता पिता नहीं मिलेंगे, सब में मिल जाएंगे, अभी हम मर जाएंगे फिर मिल जाएंगे। किंतु वैष्णव जो भक्त है उसका मिलना बड़ा फायदेमंद, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे वैष्णव का मिल गया किसी कारण से, किसी कारण से मिल गया, और फिर उनका उनसे हमारा वियोग हो गया, इससे बढ़कर के और दुख नहीं। इसलिए वैष्णवों का मिलन ही सबसे आनंद युक्त है, वैष्णवों का वियोग ही सबसे हमारा दुख। यदि वैष्णव नहीं होते, कृष्ण भक्त नहीं होंगे तो हमको भगवान की तरफ में कोई नहीं ले जा सकता। यदि भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे संतों को भेजते हैं, और ऐसे भक्तों के संग से भगवान में हमारी रुचि होती है, अन्यथा भगवान में रुचि हो ही नहीं सकती है। इसलिए वैष्णव का संग मिल जाए और फिर उसका विछोड़न हो जाए, इससे बढ़कर के संसार में और कोई दुख नहीं है। भगवान का मिलना और भगवान से वियोग होना भी इसी अधिक बात नहीं। इसीलिए ब्रज का कोई भी व्यक्ति ब्रज को छोड़कर के, ब्रजवासियों को छोड़कर के मथुरा में कृष्ण को के यहां नहीं आए, कृष्ण के संग में उतना वो लाभ नहीं होता जो भक्तों के संग से होता है। कल्याण कैसे साधन किया, कैसे भगवान को पाया, ये कृष्ण भक्त बतला है, दूसरा नहीं बतला। इसलिए भक्त वैष्णव का संग सबसे अधिक श्रेष्ठ है। ऐसे ही बहुत से उन्होंने बतलाए हैं। आज लाइट भी नहीं है, वैसा ये भी नहीं है, बहुत परिश्रम लग रहा है, इसलिए आज यही पर समाप्त करते हैं। दो कीर्तन अभी ठाकुर जी के सुनने के भी हो जाएंगे।
Thank you.
Thank you.